لينا.
تخوّا يا كما
ويكوشتو كهينا
كجو تجاو
कुछ कहिए ना, कुछ दे आखो।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज, प्रोड्यूसर हमारी नुखबत मलिक हैं और हमारे मेहमान बम्बई से हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि उनसे आपका तारुफ करवाएं, आप में से बहुत सों का वैसे फेसबुक के जरिए हो गया तारुफ, हम एक झलक सुनाते हैं उनके काम से।
वो पागल लड़की कह रही थी कि वो आपकी बेटी है।
हमें इस समय अपने विवेक और बहुत ही समझदारी से काम लेना है। एक मीटिंग की सफलता आप अपनी अपनी जगह ग्रहण करें और इस मीटिंग को कामयाब बनाएं। तो सुनिए, सुनिए आप।
चल 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 चल। तो मैं ये कह रहा था कि देश क्या होता है, नदी, जंगल, पहाड़, समंदर या मैदान, देश ये नहीं होता।
अरे चलो ना।
तो ये फिल्म का नाम है वो छोकरी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मुतादित अवार्ड मिले हैं और शुभंकर घोष साहब हमारे इसके डायरेक्टर थे और उनका अपना ख़ानदान जो है वो उसका ताल्लुक फिल्म के एक बड़े मुमताज़ घराने से है। कैसे, ये हम शुभंकर साहब से पूछते हैं। जी आदाब शुभंकर साहब।
नमस्कार। आदाब
जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
बहुत ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ।
मतलब आप लुत्फ उठा रहे थे समंदर का, हमने आपको समंदर से उठा के और मजबूर किया कि हमारे सुनने वालों से बातें करें, तो माजरा चाहते हैं। कैसा है मौसम आपके यहाँ आज?
मौसम एकदम सही है, गर्म है।
अच्छा,
थोड़ा सा बट विंटर इज अप्रोचिंग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विंटर। आपके यहाँ ज्यादा होता, हमारे यहाँ ठीक होता
है। हाँ नहीं, हमारे यहाँ आज तो ठंडक है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इस दफा यहाँ गर्मी बहुत पड़ी है वॉशिंगटन में भी। तो शुभंकर जी, आपसे थोड़ा बहुत तारुफ तो हुआ हमारे सुनने वालों का, जिस दिन सोमा हमारे प्रोग्राम में आई थी आपकी बेगम साहिबा और ज़बरदस्त क्लासिकल फनकार हैं, उनसे बातें हुई और कुछ आपने भी उनका तारुफ करवाया। तो उस वक्त आपने बताया था कि आपके जो वालिद थे वो खुद स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर थे, नबिंदो घोष साहब। थोड़ा सा उनके बारे में हमें बताइए।
ये अग्नियुग के तीन बड़े नाम डायरेक्टर थे, सॉरी राइटर थे, बंगाल के लिटरेचर थे, नबिंदो घोष। हाँ, उनमें से सबसे कम उम्र वाले थे। तो इन्होंने ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में सीआईडी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे
जी।
तो स्वाधीनता संग्राम में एक लड़का पटना सेक्रेटरिएट के ऊपर चढ़ के ब्रिटिश फ्लैग को उतार के इंडियन फ्लैग लगाने का कोशिश कर रहा था।
अच्छा।
तो नीचे से एक सिपाही ने गोली मारा और वो लड़का नीचे गिर गया और मर गया। तो ये दृश्य को पिताजी ने देखा
जी,
अपने विंडो से देखा, वो अपने काम कर रहे थे, वो देखा और he got terribly moved and he wrote two novels which became hit. वो इतना प्रचलित हो गया कि उनका नाम हो गया। पटना से एक नव युवक लिख रहा है, डाक दिए जाए एंड फियर्स लेन, दो नॉवल उन्होंने लिखा।
अच्छा,
डाक दिए जाए का मतलब है मैं उकार के जा रहा हूँ, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना
जी जी जी,
तो उसको डाक दिए जाए करते हैं बोलते हैं, हाँ बंगाली में। तो दैट नॉवल वॉज ऑन मदर हु हैज थ्री सन्स, तीन लड़के उनके, एक के बाद एक कैसे देश ये संग्राम में उन लोग शहीद होते हैं।
अच्छा।
एंड अल्टीमेटली द मदर से सबसे छोटे को तू भी जा।
तो उन्होंने उसे पहले कुछ भी नहीं लिखा था, ये इस देखने से पहले
ही वाज राइटिंग सब अपने अपना, ही वाज वेरी टैलेंटेड, वो कॉलेज में स्कूल में लिखते रहते थे, वहां से मैगजीन की मिले थे.
अच्छा.
ही नेवर रोट ए नॉवल, यू नो, दिस वाज द फर्स्ट it was such a push that he broke the barrier and he really became famous.
Acha. So
the novel became such a hit, and the British government said he's a servant.
Ji.
British servant, and he's writing seditious material. So unka naukri के ऊपर, उनको तो कोर्ट मार्शल का ऑर्डर आने वाला था
लेकिन बच गए.
तो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो बोले, भैया तू रिजाइन कर, जल्दी से जल्दी तेरा वारंट निकलने वाला है.
अच्छा.
तो माय डैड रिजाइन दैट सेम डे एंड ही बिकेम अ फुल टाइम राइटर.
जी.
एंड ही लेफ्ट पटना एंड ट्रैवल टू कोलकाता. कोलकाता में जा बसे.
जी.
अब कोलकाता में जुटते रहे, आनंद जी ने एक स्टाइलाइज राइटिंग किए थे अजब मगर कहानी, दैट बिकेम रियली रियली, यू नो, मीरा सिंह वांटेड टू डू इट, बिमल रॉय द बंगाली यंग बंगाली डायरेक्टर वांटेड टू डू इट, बट मीरा सिंह हैड करियर.
तो मैं यहाँ बात काट के थोड़ा सा पूछूंगी कि कितने और कितने बहन भाई हैं आपके, उनके यानी और कितने बच्चे थे?
मेरे मेरे से बड़े एक भाई हैं, बड़े भाई हैं जो अभी ब्रिटिश आर्मी से कर्नल होकर रिटायर हुए.
अच्छा.
मेरी छोटी बहन है जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज पेपर है, इंडिया का बड़ा न्यूज पेपर, उसमें वो आर्ट एडिटर थी.
अच्छा. तो असर तो आया, इसका मतलब है वाले साहब से बच्चों में आया वो जो है फन का. तो मैं कुछ नाम यहाँ पहले पढ़ना चाहूंगी, फेसबुक पे लोग हमारे साथ हैं, कुछ ने आपके लिए सवाल भी भेजे हैं. हशमत आफरीदी, फखरुद्दीन, मुकद्दस रजा, तौसीफ शौकी, जुबैर जोया, अब्दुल्हक चौधरी, यूनुस कबूल, लियाकत हसन, शाहवली, रिजवान रिजवी, चौधरी सगीर, अहमद जाहिदी, आशिक खास खैरी. तो इनमें से तौसीफ शौकी ने तो ये पूछा है कि क्या आपने कभी किसी फिल्म में अदाकारी भी की या खाली डायरेक्शन का है, और एक सवाल आपसे ये है कि आप किस फिल्म को, मुकद्दस रजा साहब को, अपना मास्टरपीस समझते हैं, जिन फिल्मों को आपने डायरेक्ट किया? जी.
तो पिछला वाला बहुत डिफिकल्ट है, बट पहला वाला मैं तुरंत जवाब दे सकता हूँ.
जी.
मैं जनरली कैमरा के सामने नहीं आता हूँ.
अच्छा.
पर एक फिल्म प्रहार करके मैं और नाना पाटेकर हम लोग बना रहे थे, नाना पाटेकर अल्टीमेटली वाज द एक्टर एंड आल्सो द डायरेक्टर, आई वाज द को डायरेक्टर ऑफ द फिल्म.
जी.
तो हम तो प्रहार में एक सीन शूट कर रहे थे स्टेशन पे, वीटी स्टेशन है, इट्स अ वेरी बिग जंक्शन.
जी.
तो मेन जंक्शन रेलवे जंक्शन है, वहाँ पे बहुत भीड़ होता है, और कैमरा लाइटिंग सेटअप करके रिहर्सल करके रेडी है हम. जो एक्टर था, को एक्टर जो नाना के साथ जो सीन करने वाला था, वो तो नहीं आया, वी डिडंट कम. सो अल्टीमेटली नाना बोला, शुभम करते ही आ जाएगा, लेट्स डू द सीन. And we did see that, and that is one theme. मुझे एक्टर बतौर उसमें आप देख पाएंगे.
अच्छा. प्रहार में.
बाकी मैं, हाँ, प्रहार में.
वैसे नाना पाटेकर अक्सर फिल्म पिटाई करते होते हैं अपने साथ के लोगों की, तो आपका क्या रोल था? पिटने वाला रोल तो नहीं था वहाँ?
मेरा नाना का बहुत अच्छा दोस्त थी.
नहीं नहीं नहीं, मैं फिल्मों में रोल की बात कर रही हूँ. अक्सर वो पिटाइयाँ बहुत करते हैं फिल्म के अंदर, तो आपको जो किरदार मिला उसका पिटने वाला किरदार तो नहीं था, ये पूछ रही हूँ मैं.
नहीं, देखिए वो था कि वो करीबन पिटने वाला था, मगर मैं बच गया. ऐसा वाला सीन है कि एक मैं एक पिंप का रोल प्ले किया था.
अच्छा.
निभाया था मैंने कि भैया चलो मेरे साथ, आई कैन टेक केयर ऑफ यू, एंड वो बोलता है प्लीज गो, प्लीज गो. शहर में व्हेन एन आर्मी मैन कम्स फ्रॉम द फ्रंटियर to the city.
जी.
Welcome by pin. That was the angle of that scene.
अच्छा. चलिए, दो समझ के उन्होंने छोड़ दिया. चलिए हम एक झलक और सुनते हैं आपके एक डॉक्यूमेंट्री से, उसके बाद आगे चलते हैं.
हमारे हिंदुस्तानी कलाकार हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं,
इसलिए कि वहाँ उनकी कद्र हो रही
है और नामी गिरामी है. ولایت خان کم نہیں نام رکھتا. روی شنکر جی اپنا مکان وہاں بنوائے, علی اکبر خان وہاں چلے گا, اور بہت سے ایسے. یار ایسا کہے کو ہو رہا, آپ نے جو کہا ہے وہ ہم کو بہت جچی ہے وہ بات. یہ کلاکار کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ بس دو دو چار کی طرح کہہ رہا ہوں, ہم کو جب سب ہندوستان میں مزہ ملے گا سب وہاں کا, تو ہم کاہے کو جائیں گے وہاں.
تو یہ آپ کی ڈاکیومنٹری سے ایک جھلک تھی, یاد بسم اللہ, اور بہت ہی مجھے بہت اچھی لگی, کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ جو سوما ہے ان کا ذکر تو ہے, لیکن جس محبت سے اور جس عقیدہ سے آپ نے بسم اللہ خان صاحب کو ریکارڈ کیا اور ان کے فن کو بھی اجاگر کیا, پھر ایک جو فنکار کی بے کسی ہوتی ہے, قسم پرسی کا جو عالم ہوتا ہے وہ, اور خاص طور پہ یہ جو آپ کا کلپ تھا اس میں تو نوشاد صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, بڑی بڑی یادگار ہستیاں ہم نے دیکھی اس میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکیومنٹریز جو آپ نے بنائی فنکاروں پر, وہ خالی بسم اللہ صاحب ہیں یا کسی اور پہ بھی آپ نے بنائی؟
میں نے نوشاد جی کے اوپر بھی ایک فلم بنا رکھا ہوں.
اچھا.
میں جہاں موقع ملتا ہے یہ لیجنڈز کا میں ایک پورشن کو ایٹ لیسٹ میموری کے لیے رکھ لیتا ہوں.
اچھا.
جو بھی لیجنڈز جس کا میں کر سکتا ہوں میں کر لیتا ہوں. میں جب غصہ ہوتا ہے تو میں کیمرہ لے کے نکل جاتا ہوں, جیسے کہ میں نے ٹیررزم جو بامبے اٹیک کی تھی ٹیررسٹ لوگوں کا, اس کے اوپر بھی فلم بنایا.
اچھا.
اس چلتے میں شارٹ فلم کرتے ہی رہا ہوں.
اچھا. تو بلکہ آپ سے یہ پوچھنا چاہیے ہمیں کہ آپ کو اس میں جو آپ کی آپ نے سوال کو ویسے جواب نہیں دیا, تھوڑا سا آپ نے, مجھے پتا ہے کہ فنکار اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے ایسی باتیں, لیکن خود آپ کو کون سی پسند ہے, اگر ہم ڈاکیومنٹریز کو بھی شامل کر لیں اور آپ کی فلمز کو بھی, تو میں ماسٹر پیس تو نہیں کہوں گی کیونکہ ظاہر ہے آپ کو کبھی بھی اطمینان نہیں ہوگا, اچھے سے اچھے کی تلاش ہوگی, لیکن کون سا ہے آپ کا کام جو آپ کو پسند آیا, آپ کا اس کی لوگوں کو بھی پسند آیا بہت؟
کیا یہ محبت والی بات ہوتی ہے, جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو یہ فال ان لو وتھ ورک, اپنا کام کیا, نہیں تو کام نہیں کر پاتے ہیں. سو اسی طرح سے وتھ ایچ پروجیکٹ ہم آرٹسٹ وی ٹرائی ٹو ڈو آر بیسٹ. تو مجھے بہت آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ مائی ورک ہیز بین اپریشیٹڈ, جو بھی کام کیا ہوں تو مجھے سیٹسفیکشن سب سے زیادہ ملا ہے یادو بسم اللہ میں.
اچھا.
اینڈ ایک تیجس کر کے فلم بنائی تھی ہم لوگوں نے, تیجس.
اچھا.
وہ اوبرجن میں بیسٹ کیا بولتے ہیں ہیومن ڈاکومنٹری چرچ نے سائٹیشن دیا تھا اوبرجن فلم فیسٹیول میں. That was a very rare film. That was perhaps my second jump at documentary. پہلا تھا کانٹا پر چترے, اس طرح کا میں نے فلم, اٹ واز اے ریئلی ڈاکومنٹری ریئل, بٹ دس واز سم تھنگ وتھ اے سے کہ بھیا یہ ایک ہیومن ٹرافکنگ جو ہے یہ کیج میں بند کرنے والی بات ہے. سو دیٹ از ہاؤ آئی نیم دا فلم کیجز.
اچھا اچھا. تو جی جی فرمائیے فرمائیے کیا کہہ رہے
ہیں. اینڈ وہ پنجرا کس کا ہے؟ اٹ از اکنامک. وہ ان لوگ دے سے دیٹ آئی ہیو بوٹ اٹ, میں نے تم کو خریدا ہے 35,000 میں, یو بی ان دا ٹریڈ اینڈ پے می بیک ود انٹرسٹ 35,000 ڈالرز. ہاں تو اتنا کماتے گا, کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگاتے ہیں.
اچھا. توصیف شوقی نے ویسے ابھی بتایا ہے کہ انہوں نے آپ کی فلم دیکھی ہے پرہار, انہیں بہت پسند آئی. اس کے علاوہ لالا یامین آرائی اور ماجد زمان شانی, ان سب نے بھی سراہا ہے آپ کو, خوش آمدید کہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جیسے ہم نے استاد بسم اللہ خان کی جب ڈاکیومنٹری دیکھی, تو ایک عام خیال ویسے یہ ہے کہ جن ملکوں میں فن کی قدر ہے, انڈیا ان ملکوں میں شامل ہے, جہاں فنکار کو بھی عزت ملتی ہے اور فن کو بھی, اور میوزک کو تو بہت زیادہ, کیونکہ میوزک جو ہے ایک طرح سے اس کا حصہ بھی ہے, مذہب کا حصہ بھی ہے. تو لیکن کئی آپ کے خیال میں یہ جو استاد بسم اللہ خان کے ساتھ ہوا, مطلب وہ بڑی غربت میں ان کا انتقال ہوا اور کوئی ان کو, بلکہ آپ کی بیگم صاحبہ نے ان کو آگے بڑھانے میں بڑا کام بھی کیا, تو ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ, اتنے بڑے فنکار کے ساتھ؟
دیکھیے بہت ایک زندگی میں لمبا کیریئر تھا ان کا, تو بہت زینت میں ان کا فیم تھا, So then sometimes you get a low curve also. And then you fought back again. You fought back then, so maane unko bahut madad kiya. So that curve I know, because that is when we joined Prasad ji ke saath hamara rishta kayam hua. सोना जी के फोस्टर फादर बने और मैं दादा माँ, तो मुझे दामाद भी बोल देते हो.
हाँ, आप तो उनके दामाद हुए, सही बात है, उनको बेटी बनाया था ना. अच्छा, तो कोई बहुत उनकी बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हो उस बिस्मिल्लाह खान साहब की?
उनका ऐसा था कि वो बोलते थे, देखो बेटा जो कुछ भी बोलोगे एक मिनट सोच के बोलो, सोच के बोलो, फिर जो बोलोगे उसको अमल करोगे. तो ये बात मुझे एकदम दिल पे एकदम उतर गई मेरी. What a kind of personality, he speaks only the truth. और कोई सच के अलावा कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि वो सोच के बोलते हैं.
अच्छा अच्छा, ऐसा है कि आपकी आवाज हमें काफी यानी खराब सुनाई दे रही है, मतलब साफ नहीं सुनने में आ रही. तो हम ये करते हैं कि हम आपको दोबारा से कॉल करते हैं. आपका अगर कोई लैंडलाइन नंबर अगर है, आप हैं घर पे? हाँ, हम आप, मेरे पास है आपका लैंडलाइन नंबर, तो मैं उस पर भी हम आपको कॉल करके देखते हैं, और इस पर भी. तो हम आपके इस दौरान अपने सुनने वालों को एक एक्चुअलिटी वो सुनवाते हैं, आपकी फिल्म की झलक डॉक्यूमेंट्री की. हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं.
1947 में उन्होंने दिल्ली के लाल किले से शहनाई पर राग काफी बजाकर हिंदुस्तान की तारीख में अपना नाम लिखवा लिया. लाल किले से ही उन्होंने सन 1950 में 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर अपनी शहनाई बजाकर अपने लिए शोहरत के दरवाजे खोल दिए. उनकी शहनाई की आवाज कह रही थी, दिल में इस तरह से अरमा है आजादी के, जैसे गंगा में झलकती है चमक तारों की.
जब हम आजाद नहीं थे तो हम लोग कितनी कोशिश किया, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कोशिश किया, आज हम आजाद हैं. फिर आजादी के बाद आपस में लड़ते क्यों? हम संगीत को लेके चलें तो हमारे यहाँ झगड़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह.
शहनाई को बिस्मिल्लाह ने गंगा की रवानी दी, भारत की बनी शानी, बनारस को जानी दी.
वाह वाह, क्या खूबसूरत उनकी शान में ये गीत है. तो ये खुद खास तौर पे लिखवाया आपने, किसने लिखा है ये? बहुत अच्छा है
ये, बहुत ही उम्दा लिखा हुआ है जी. और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने लिखा, इज आल्सो ए म्यूजिक डायरेक्टर.
क्या नाम है उनका?
उनका नाम है विजय.
अच्छा,
गजल वजल भी बहुत अच्छे गाते हैं वो
जी.
एंड He is a friend for long. तो एक दिन वो आया और बोले कि ये देखो मैंने उनके लिए रचा है. So this was the right song for this moment. ये मुहूर्त के लिए जैसे लिखा हुआ था.
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. तो आपसे एक सवाल, मैं कुछ खुद ही जवाब दे सकती हूँ उसका. जाहिर है जब उनको पता लगा है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे साथ हैं, तो फखरुद्दीन आफरीदी ने कहा है कि आप हमारे यहाँ भी आइए और एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए. मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान से है इनका मैसेज, लेकिन ये हमारे जो घोष साहब हैं ये बम्बई में हैं, और इनके लिए मुमकिन नहीं होगा ये वाली डॉक्यूमेंट्री बनाना. ये कोई लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो बना सकते हैं, पाकिस्तान में जो लोग हैं. अच्छा, मुकद्दस रजा ने ये पूछा है, क्योंकि आप फिल्म डायरेक्टर हैं, कि अब जो एक क्लासिकल फिल्में होती थी इंडिया की, अब बॉलीवुड वैसी फिल्में क्यों नहीं प्रोड्यूस करता?
क्या है, एक पैरेलल सिनेमा का एक मूवमेंट चला था इंडिया में
जी,
जिसको गवर्नमेंट ने भी प्रोत्साहन दिया था. एनएफडीसी उसमें लीड रोल निभाई थी, मैं भी एनएफडीसी का हिस्सा था. हाँ, हमने पैरेलल सिनेमा में ही योगदान दिया है. तो वो मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हुई.
अच्छा.
एंड करीबन 20-25 साल चली वो मूवमेंट, एंड उसमें बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स सामने आए, सैम बेनेगल से लेके बुद्धदेव बाबू, फिर गौतम घोष, सब लोग सामने आए, इंक्लूडिंग सतीश धीरेन भी, उन्होंने भी एनएफडीसी के लिए फिल्म बनाई
जी।
तो पैरेलल सिनेमा का मूवमेंट बहुत सुंदर चला, एंड इट हैड बहुत सारे एकदम बेस्ट फिल्म्स इंडिया के प्रोड्यूस हुए वहां पे। फिर द फंड्स स्लोली स्लोली डाइड बिकॉज द गवर्नमेंट सेड नाउ द इंडस्ट्री हैज अपने पैरों पे खड़ी हो गई है फिल्म इंडस्ट्री, तो अब इनको सब्सिडाइज करने का कोई मतलब नहीं, आप मेन स्ट्रीम से ही जुड़ के फिल्म बनाएं। इसलिए उस वो मूवमेंट अभी आप जो देखते हैं जैसे थ्री इडियट्स हुआ या इस तरह के जो मैसेज वाले फिल्म है, वो इसी में बन रही है, मेन स्ट्रीम में ही बन रही है
जी।
सो मसान बनी, इस तरह से फिल्म जो बन रही है, यू हैव टू डू इट विद द मेन स्ट्रीम नाउ, इसलिए बॉलीवुड की फिल्म में गिना जा रहा हूँ।
अच्छा, मैं बल्कि आपको एक दाद देना चाहती हूँ। मैंने आपकी फिल्म वो छोकरी देखी नहीं थी, लेकिन उसके लिए क्लिप तलाश करने के लिए जो मैंने देखना शुरू किया, तो आप यकीन माने मैं तो फिर पूरी फिल्म देखी मैंने तकरीबन आपसे बात होने के बाद, और मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी आपकी फिल्म। क्योंकि एक तो उसमें एक जो हमारे यहाँ सामाजिक बेइंसाफी है, और जिस तरह जो एक मुनाफिकत है सियासत में खास तौर से, तो बहुत उसको अच्छी तरह पोर्ट्रेट किया और बहुत सादगी से किया है। मतलब उसमें कोई बहुत तामझाम नहीं है, बहुत
सिंपल फिल्म है,
सिंपल फिल्म है, और यही इसकी खूबसूरती
है, दैट इज द ओनली थिंग। वो बहुत गहरा है, ये स्क्रिप्ट जो है मेरे वालिद ने लिखा।
अच्छा।
हाँ, नाम मेरे माता जी का दिया।
अच्छा।
बट ये ढाई पन्ने की एक बहुत शॉर्ट स्टोरी राइटर, फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर का छुड़ी टा करके बंगाली शॉर्ट स्टोरी है, उसको उन्होंने बनाया ये।
अच्छा, तो आपके वालदा का नाम क्यों डाला उसमें, अपना नाम क्यों?
दैट वाज हिज व्हाट यू कॉल, ये एक वुमेन्स इमेंसिपेशन के बारे में फिल्म है, और ही वांटेड माय मदर होम ही रिस्पेक्टेड वेरी मच, को ये उन्होंने ये किया।
अच्छा,
रिस्पेक्ट दिया उन्होंने।
बहुत बहुत खूब, बहुत। देखिए, हर चीज में एक कहानी होती है, जब भी मतलब आप जैसे लोगों से बात करो तो जैसे एक परत के बाद दूसरी परत खुलती है। तो मुझे इसमें जो ज़ाहिर आपके वालिद की कहानी है, तो बंगाली में होगी कहानी या उर्दू में?
हाँ, थोड़ी सा बंगाली में था, फिर अच्छा। उसको हम लोगों ने हिंदी में किया,
हिंदी में किया।
तो ये फिल्म का जो मेन वो है कि वो बापू को ढूंढ रही है।
जी हाँ, बिल्कुल।
बापू का मतलब इट्स नॉट ओनली अपने पिता, बट इट इज ऑल्सो महात्मा गांधी को ढूंढ
रही है। बिल्कुल, जो उनका मैसेज था उसकी तलाश में है वो।
आज भी हम वो ढूंढने जा रहे हैं, और आज भी हमारे लीडर्स लोग किस तरह से हमारे साथ,
हाँ, उनको ट्रेन से उतार दिया जाता है ऐसे कह के कि ये तो चिल्लर है, उतार दो ट्रेन से। ये बात सही है, बिल्कुल। अच्छा, तो वैसे आपको खुद कौन सी फिल्म पसंद है अपनी, अब बताइए मुझे। मैंने पसंद है जिसमें आपका थोड़ा दिल खुश हुआ बना के।
मुझे तो हर फिल्म, देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो भी एक कॉमेडी का एक माइलस्टोन है,
जी।
तो वो भी हम लोगों ने बनाया, तो ये त्रिशाग्नि भी हमने बनाया, पिताजी का पहला फिल्म था वो, और मैं उसमें को प्रोड्यूसर और एसोसिएट डायरेक्टर था उसका।
अच्छा।
हाँ, तो वो भी बहुत एक बुद्धिज्म के ऊपर वो एक अलग ही लव स्टोरी।
अच्छा।
हाँ, तो इस तरह से जो भी हम लोग करते, तो वी पुट आवर हार्ट एंड सोल। आप ये पूछेंगे कि आपका कौन सा बेटा या बेटी सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं कैसे करके उसका जवाब बोलिए?
मुझसे पूछे तो मैं बहुत आसानी से आपको जवाब दे दूंगी कि मुझे अपना एक बेटा और एक बेटी पसंद है, क्योंकि दो ही है तो जाहिर है दोनों
मेरे ज्यादा है ना।
अच्छा, आपके लिए मुश्किल है तो माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं आपके?
देखिए, आप मेरे, I have had a long innings, 76 में मैं इंडस्ट्री ज्वाइन किया, दो साल मैं बासु चटर्जी के साथ मैं असिस्टेंट था। उसके बाद से बासुदा ने मुझे बोला कि भैया दो साल हो गए, अगर इसके बाद तुम असिस्टेंट गिरी करोगे तो कब डायरेक्टर बनोगे?
अच्छा.
तो हाँ, ही गाइडेड मी एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय इंडिपेंडेंट वर्क. फिर मेरा पहला सीरियल आया रिश्ते नाते.
अच्छा.
शोभा डॉक्टर जो हम लोग बनाई थी उन्होंने मुझे ये ब्रेक दिया एंड इट वाज इंस्टेंट हिट. मैंने नवीन निश्चल को दोबारा छोटे पर्दे पे, पहले बार छोटे पर्दे पे, फ्रॉम बिग स्क्रीन ही केम टू स्मॉल स्क्रीन विथ रिश्ते नाते.
जी.
एंड दैट वाज इमीडिएटली. उसके बाद क्या हुआ, जो लड़की उसमें एक्टिंग कर रही थी दीपिका, शी बिकेम सीता इन रामायण.
अच्छा.
तो शी एंड नवीन निश्चल का कहानी था कि हाउ ए डॉक्टर एंड ए पेशेंट दे डेवलप देयर ओन. तो मेरे को आई हैड टू कट शॉर्ट द स्टोरी एंड एंडेड एट 13 पार्ट्स बिकॉज शी बिकेम हीरोइन ऑफ रामायण. बट दैट वॉज वन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड इट लेफ्ट ए मार्क.
अच्छा.
एंड आई इमीडिएटली, मेरा जो डिप्लोमा फिल्म था ना, दैट वॉज ए लैंडमार्क बिकॉज मैंने एंटी रैगिंग फर्स्ट फिल्म बनाई थी इन इंडिया.
अच्छा.
एंड दैट वॉज शोन टू श्रीमती इंदिरा गांधी जी और ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर
जी.
And she saw it and said, why is this not film released? This should be released during the vacation period so that all the students know that ragging is not a good thing. And she banned ragging in India.
Achha. Itna uska impact tha film ka aapki. To kya naam kya tha us film ka?
End of the game.
End of the game.
It starts off as a game. Ragging starts off as a game.
Achha.
And sometimes takes lives.
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने. अच्छा, तो चलिए कुछ नाम हैं, शाजिया खान, दीन मोहम्मद बलोच साहब, गुलफाम बंगश और खालिद खान, जान आलम बतानी, ये सब इन्होंने भी पूछा है, मतलब आपको खुश आमदीद कहा है प्रोग्राम में. अच्छा, हम चलिए एक अपना प्रोमो भी सुनते हैं, किधर चलते हैं, और उससे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई और उसके बाद प्रोमो और फिर आपसे मजीद बातें.
अब आपके हाथ में. पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए. दूर जाने की जरूरत नहीं. वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं. आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है. वीओए उर्दू अब आपके हाथ में.
तो ये बताइए मुझे शुभंकर, के आपके जो फादर थे वो आपकी डायरेक्शन के बारे में क्या कहते थे?
उनको बहुत फख्र था मेरे काम पे, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी.
अच्छा.
हाँ, और वो जानते थे कि मैं उनके स्टाइल में चलता हूँ, आई रियलिज्म फॉलो करता हूँ
जी.
हाँ, और मैं डरता नहीं हूँ, निडर हूँ. तो वो भी वैसे थे.
अच्छा.
हाँ, जो कहना है वो कहना है.
लेकिन आपने एक बंगाली में भी बंगाली फिल्म्स भी बनाई है, खाली हिंदी बनाई है आपने? क्योंकि मैंने
आपने... मैं पला बड़ा हूँ बॉम्बे में ना
जी,
तो मैं बॉम्बे में हिंदी फिल्म्स ही करता था. पर एक बार मुझे शक्ति सामंत जी ने बुलाया
जी,
when he had stopped directing, तो उन्होंने बोला कि एक प्रोडक्शन मैंने लॉन्च की है, एक फैमिली ड्रामा है, ई टीवी में एक सीरियल है, आई वॉन्ट यू टू डायरेक्ट इट. मेरे बेटे को को प्रोड्यूसर एंड आप एसोसिएट करके आप दोनों मिलके उसको करो. तो हिज सन वॉज हैंडलिंग द प्रोडक्शन पार्ट, आई वॉज डूइंग द डायरेक्शन पार्ट.
अच्छा.
तो हमने करीबन 300 एपिसोड उसके एयर किए. सीरियल का नाम था दुर्गा, इट वॉज ए फैमिली ड्रामा
जी,
एंड वुमेन बेस्ड था. तो बहुत लवली सीरियल था, इट वेंट ऑन फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम. तो ये इज वन एंड ओनली बंगाली सीरियल दैट आई हैव डन. एक मैंने मराठी सीरियल किया था बाला साहेब ठाकरे के कहने के पे.
अच्छा.
हाँ, उनका मिसेज जो मातोश्री जी थे, शी यूज टू लाइक माई वर्क. तो एक दिन मुझे बुलाया गया कि शुभंकर जी बराई मिलिए. तो मैं गया, मिला. तो वो बाला साहेब बोले, देखो आप लोग अच्छे अच्छे सीरियल हिंदी में बनाते हो, मराठी में बहुत वाहियात सीरियल बन रहे.
अच्छा.
आप एक अच्छा सीरियल बनाओ. तो घर आके मैंने वाले पिताजी से बात कहा कि ऐसे ऐसे बोले. मैंने बोला मैं जरूर करूंगा, करके आया हूँ, मगर इट हैज टू बी यूनिक. तो हमने कई दिन डिस्कस किए. फिर एक दिन पिताजी ने कहा कि देखो टैगोर का एक वुमेन्स इमेंसिपेशन के ऊपर एक बहुत सुंदर कविता है.
अच्छा.
तो उसको हम लोग करते हैं. देन ही रेड आउट द नॉवल टू मी एंड दैट वाज वंडरफुल.
अच्छा.
उसको मैंने मराठी में बनाया. दैट इज द ओनली मराठी सीरियल आई हैव मेड. निष्कृति, दैट इज द टाइटल. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के निष्कृति पोएम के ऊपर है वो. इट्स ए लॉन्ग पोएम.
थोड़ा सा सुनाइए हमें टुकड़ा उसका, छोटा सा कोई टुकड़ा सुनाइए
उसका, कहानी का.
उसका टैगोर की जो नज्म है उसका.
वो तो बंगाली में है, अभी वो मेरे सामने नहीं है.
अच्छा. ठीक.
और मैं उसका जिस्ट बोल सकता हूँ.
हाँ बताइए.
एक पिताजी और उनका परिवार, माता जी है
जी.
अचानक माता जी गुजर जाती है और ये लड़की का विवाह का बातचीत चल रहा था, वो रुक जाता है. फिर थोड़े दिनों के बाद, जब माता जी गुजर जाने के बाद थोड़े दिन बीत गए, तो पिताजी फिर दोबारा शादी की बातचीत छेड़ने लगे. लड़की मनी मन में उसके पड़ोस में एक लड़के से प्यार करती थी, मगर पिताजी को बोल नहीं पाई थी. तो लड़की बोल रही कि अभी मेरा पिताजी मेरे लिए सोच ले विवाह का. पता लगा कि वो खुद के सेकेंड मैरिज के लिए
अच्छा
अटेम्प्ट कर रहे हैं. एंड ही प्रिपेयरिंग द हाउस माइंड माइंडसेट ऑफ द सबका बोल बाल के कि भैया अभी अकेले रहना बहुत मुश्किल है वगैरह. एंड द जो लड़की है वो बोलती है ठीक है. जब वो शादी करके वो लौटते हैं तब वो एक घर में एक चिट्ठी मिलती है कि आपने मुझे निष्कृति दी यानी आजादी दी, अब मैं मेरे प्रेमी के साथ वो ये शहर छोड़ के चली जा रही हूँ.
अच्छा.
लवली. एंड आई हैड ये सीरियल.
अच्छा, तो यहाँ पे सीरियल खत्म हो जाती है फिर चलती रहती है?
नहीं नहीं, ये तो उनका जैसा टैगोर साहब ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ
ये तो आपने सुनाई है. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि मैंने ये देखा है जो सीरियल्स आती हैं इंडियन टेलीविजन पे मुख्तलिफ जो नेटवर्क्स हैं उनके, वो खत्म नहीं करके देते उनको ना किसी तरह भी, और जहाँ हमें लगता है
वो हमारे टाइम पे जमाना अलग था, जमाना अलग था, एंड हम लोग बहुत सीमित टाइम पीरियड के लिए कहानी बोलते थे,
जब भी तो
कहानी खत्म तो सीरियल खत्म।
हाँ, यही तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या हुआ, कहाँ कैसे खत्म, क्योंकि खत्म ही नहीं होती। अच्छा, फिर ये भी होता है, एक जोक ये भी है कि ये कहा जाता है कि अगर कोई अदाकार और या एक्टर जो है किसी और फिल्म में फर्ज करें काम करने चले गए सीरियल में, तो उनको कोमा वगैरह में डाल दिया जाता है उतने अरसे के लिए ना, क्योंकि वो कोमा में पड़े रहते हैं।
मेरा पहला सीरियल में मुझे इसी तरह से मेरा हीरोइन को सांप से कटवाना पड़ा था।
अच्छा, क्योंकि वो कहाँ जा रही थी वो
वो हीरोइन बन गई इसमें रामायण में, सीता बनी वो। दैट वाज अ लॉन्ग सीरियल रामायण का, हाथ पैर जोड़ के वो बोली कि मुझे आप छुट्टी दीजिए, तो सांप से कटवाना पड़ा था।
शक्ति आपने ये दी, सांप से कटवा दिया, लेकिन वो उस जमाने में चल गया होगा, अब तो सबको पता लग गया कि जहाँ कोमा में गई लड़की या लड़का, तो
आई वाज द फर्स्ट वन टू डू दिस ना।
शुभांकर जी, ये कोई आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने तो एक नोबेल कॉज
कर दिया, आई एम सॉरी,
बताइए ये कोई बात है। अब तो हर आदमी, यानी जरा सी टक्कर लगी कोमा में चला गया, कोई इधर पड़ा है कोई इधर पड़ा है, पता लगा कि जी फिल्में
आजकल तो चेंज भी कर देते हैं, एक्टर चेंज हो जाते
हैं। हाँ, एक एक में तीन तीन चार चार, और हम जहनी तौर पे तैयार भी नहीं होते देखने के लिए, बिल्कुल ही बदल देते हैं।
फॉलोइंग होता है, फॉलोइंग चला जाता है फिर उसके बाद।
बल्कि इस पे मैं आपसे ये पूछूंगी, और फिर मैं वो छोकरी की तरफ आना चाहती हूँ कि आपने उसका एक क्लिप भी है मेरे पास है, इसमें मैं भी वो सुनवाती हूँ, वो छोकरी का क्लिप है। लेकिन मैं पहले आपसे ये पूछूंगी कि जो इसकी कास्ट है बड़ी कमाल की है, तो इसमें कितना किसका होता है इन्फ्लुएंस ज्यादा, कौन मुंतखब करता है अदाकारों को, कहानी लिखने वाले की बात ज्यादा सुनी जाती है, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, या सबसे बड़ी बात ये जो पैसे लगा रहा होता है उसकी, किसकी बात सुनी जाती है?
देखिए, हमारे ये जो जब पैरेलल सिनेमा की बात होती थी तो डायरेक्टर वाज ऑलवेज ऑनर्ड, उनका फाइनल से होता था कि ये कैरेक्टर के लिए ये बेस्ट है, इन अलोंग विद द प्रोड्यूसर, दैट वाज प्रोड्यूसर को ऑलवेज इन लूप रखते हैं कि भैया ये ऑल्टरनेट्स में से ये बेस्ट है।
अच्छा,
इस तरह से काम करते हैं हम लोग। बट मेन स्ट्रीम सिनेमा में कहानी को ही बांधते हैं एक अराउंड ए लीड एक्टर और एन एक्ट्रेस, उस तरह से कहानी बांधा जाता है
जी।
तो वहां पे तो सिलेक्ट हो, स्क्रिप्ट सामने रख के फिर वो एक्टर के हिसाब से स्क्रिप्ट बनती है।
अच्छा, तो यानी डायरेक्टर का बात काफी सुनी जाती है इसमें?
बात सुनी जाती है।
अच्छा।
और फिर उसके बाद जब कमर्शियल फिल्म्स का मामला आता है उसमें स्टार के अराउंड द स्टार वोवन होता है वो कहानी, एंड कास्टिंग ऑटोमेटिकली ऑलरेडी प्रीसेट रहता है।
अच्छा अच्छा, आशिक खासखली साहब, सैयद बिशारत, इन्होंने भी पसंद किया है, इन्होंने दो लोगों को खो गए, बल्कि वो जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई सुनी और बड़े खुश हुए, फखरुद्दीन आफरीदी और मुकद्दस रजा। इन्होंने फखरुद्दीन आफरीदी ने पूछा है, आपने जिक्र किया कि आपने एक बॉम्बे जो हमला था उस पर तो बनाई है, उन्होंने पूछा क्या बम्बई शहर पे आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है शहर के बारे में?
नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री उस तरह से नहीं बनाता हूँ। जब मुझे कोई कुछ बात स्टर कर जाती है, या तो दिल में न तो दिमाग में कुछ हो जाता है, तब मैं डॉक्यूमेंट्रीज में घुसता हूँ। जैसे मैं बिस्मिल्लाह खान, आई फेल इन लव विद मैन आई मेड, पांच साल मैंने शूटिंग किया उसके ऊपर। हाँ, नौशाद जी को मैं इमीडिएटली मैंने बोला कि ये ज्यादा दिन नहीं है, इनके ऊपर तो फिल्म बनानी है, मैंने बना लिया। इस तरह से व्हेन आई गेट मूव्ड देन आई मेक फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, अदरवाइज फीचर फिल्म्स एंड सीरियल्स में मैं बहुत आनंद में था।
अच्छा,
डॉक्यूमेंट्रीज मेरा शौक है,
डॉक्यूमेंट्री आपका शौक है इसीलिए। अच्छा, एक आपकी हम फिल्म का पहले एक टुकड़ा सुन लें, इससे पहले कि फिल्म पे बात करना बंद करें, और उसके बाद फिर हम कुछ आपकी डॉक्यूमेंट्री से बात करेंगे।
जी,
तुम अपनी मम्मी को भेजो, मैं उन्हीं को बोलूंगी। अप्सरा, देखो जब तक मेरा लेटर न मिले तुम स्कूल मत आना।
जी मैडम।
गो नाउ एंड सेंड योर मदर टुमारो.
यस.
तो उसे बोले कि मत आई हो.
हाँ मम्मी.
और बोले कि बस्ता लेकर जा.
हाँ.
और बोले कि मम्मी को भेजियो.
हाँ.
क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी स्कूल में वाली तू?
मैंने तो कुछ नहीं किया मम्मी.
मिसेस गीता देवी, क्या आपके फादर का नाम नवीन मजुमदार था?
जी. पर आपको?
और आपके हस्बैंड का नाम?
जी श्री ललित राम जी.
देखिए सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए.
मतलब हम तो झूठ क्यों बोलेंगे हम?
जी नहीं, आपके पति का नाम था जयंत. ये रही आपकी शादी की फोटो. मुझे स्पाइन का शौक नहीं है मिसेस गीता देवी, लेकिन जब गलत बात पता चल जाए तो देखकर मक्खी नहीं निकली जाती. स्वर्गीय जयंत अग्रवाल मलिक के भाई मिस्टर अनंत अग्रवाल मलिक की कल अचानक मुलाकात हो गई हमारे स्कूल कमेटी के प्रेसिडेंट से. खोज कर रहे थे कि क्या तुम्हारी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है. उन्हीं ने हमें बताया कि 13 साल पहले तुम्हारी शादी मिस्टर अग्रवाल मलिक के साथ हुई थी और साल भर में ही तुम विधवा हो गई और फिर मोहल्ले के एक आदमी के साथ आप भाग गई.
ये बिल्कुल झूठ है. मैं भागूंगी क्यों? हमारी शादी हुई थी.
कहाँ? कैसे? इज देयर एनी विटनेस?
बहुत बहुत आपने अच्छी फिल्म बनाई. मैं फिर यानी ये बेसाख्ता तारीफ मुझे करनी पड़ेगी. इतनी सादा सी है. बस मुझे सबसे अच्छी इसकी ये बात लगी कि टुकड़े छोटे छोटे इतने हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें तमाम किरदार जो है नेगेटिव हों. इसमें बड़े पॉजिटिव चीजें भी मौजूद हैं.
इंसान है
जी, इंसान है हर तरह के. बिल्कुल सही है. अच्छा ये बताइए कि शादी तो आपने की एक जबरदस्त हमारी गाने वाली जो है क्लासिकल गाने की ठुमरी की माहिर सोमा घोष से, तो खुद आपको भी गाने का कोई शौक है या बस सुनते हैं?
मैं गाता था अपने कॉलेज डेज में.
अच्छा. अब बीवी के रॉब में? बीवी के रॉब में गाना छोड़ दिया?
नहीं उसके लिए नहीं. मैं फिल्म्स में आया, नहीं तो मैं म्यूजिक में ही रहता. मैं पंडित निखिल घोष का मैं शिष्य था.
अच्छा.
मैं तबला बजाना चाह रहा था तो पंडित जी बोले तुमको गाना चाहिए और मुझे गाने का शौक नहीं था. मुझे तबला बजाना था. बचपन से तबला बजाना चाहता था. तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा मेरे पास 5,000 बंदिश है, मैं तुमको आराम से अच्छा तालीम दूंगा. इस बीच में मुझे मेरा कॉल नेचुरल कॉल फिल्म्स के लिए आया. मेरे पिताजी मुझे 2 बड़े फिल्म फेस्टिवल में लेके गए. जागरेब स्कूल ऑफ आर्ट का शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था और इग्माक बगमन का स्वीडन के जो मास्टर हैं उनके फिल्म्स के फेस्टिवल में लेके गए. माय लाइफ चेंज. मैं फिल्म का कायल हो गया. मैं आईएएस का प्रिपरेशन छोड़ के सिविल सर्विस का आई गेव माय इंटरव्यू एट द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट. वहां पे मैं जाके हाजिर हो गया. वहां पे देखा कि वाइवा जब मैं रिटन में बहुत अच्छा मार्क्स लेके मैं पहुंच गया. अब फिर मैं वाइवा के लिए गया तो देखा मैं सामने बैठे हुए ऋषिकेश मुखर्जी.
अच्छा.
तो मैं थोड़ा चौंक गया. वो भी चौंक गए. बोले तुम यहाँ पे कैसे? बोला मैं आ गया हूँ. तो मेरे को बहुत बहुत लंबा इंटरव्यू लिया उन्होंने.
अच्छा.
45 मिनट्स आई वॉज इंटरव्यूड. आई वॉज परहैप्स ड्रिल्ड. मेरा उसके बाद बोला चलो अब मैं तुम्हारे पिताजी को फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, यू आर सिलेक्टेड. पिताजी भी आसमान से गिरे क्योंकि मैं घर में नहीं बताया था. हाँ. कि मैं फिल्म लाइन में जा रहा हूँ. देन आई केम बैक होम फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे. बॉम्बे में आने के बाद मैं माता पिता के सामने खड़े हुए बोल के क्यों नहीं गए? दैट वॉज द फर्स्ट. बोला पता नहीं मुझे होगा कि नहीं, सिलेक्ट होगा कि नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया. बोले तो सिलेक्ट तो हो गया, अभी क्या करोगे? बोले मैं जाऊंगा. बोले देखो तुम अच्छा नौकरी वोकरी करोगे तो वो अच्छा है क्योंकि फिल्म लाइन में बहुत स्ट्रगल होती है. तो बोला आपने तो स्ट्रगल की सारा जीवन, तो मैं भी कर लूंगा. बोला तो वही तो नहीं चाहते हम, तुम अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे हमको अच्छा लगेगा. बोला नहीं, बट माय कॉल इज फिल्म, आई वांट, दिस इज द बेस्ट कम्युनिकेशन मींस. सिनेमा तब टेलीविजन नहीं थी तभी.
जी.
देन उन्होंने बोला ठीक है चलो, यू हैव चोजन.
अच्छा ही हुआ आप आ गए।
हमारे
अफसर तो बहुत हैं।
हमारे बैच में बहुत वंडरफुल स्टूडेंट्स थे एंड वी वर बंच ऑफ मैडकैप्स, फिल्म मैडकैप्स।
मसलन और कौन था आपके अलावा?
हमारे साथ बहुत नामी नामी लोग तभी स्टूडेंट्स थे।
अच्छा।
सईद मिर्जा, कुंदन शाह
जी,
मैं, विनोद चोपड़ा, फिर मेरा एडिटर था डेविड धवन, वो बाद में नामी डायरेक्टर बन गए
जी।
हाँ, इस तरह के अब्बास आए थे अफगानिस्तान से, बादल रहमान आए थे बांग्लादेश से, सैयद जलालुद्दीन जाकी आए थे बांग्लादेश से। वी वर बंच ऑफ 16 वेरी गुड डायरेक्शन स्टूडेंट्स। और हमारे बैच में 5 सिनेमाटोग्राफर वो भी छा गए एकदम, दे बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स ऑफ आवर कंट्री। तो वी वर मैडकैप बैच।
अच्छा, वाह।
एंड वी और हम लोग सोते थे, जागते थे
फिल्म के लिए,
फिल्म्स में, फिल्म्स के लिए।
अच्छा,
दिस बैच बिकेम द फर्स्ट टेलीविजन बैच ऑफ इंडिया, ट्रेन्ड बैच, टेलीविजन ट्रेनिंग हम लोग को मिली थी
जिन्होंने बाकायदा सीखी टेक्निकल। अच्छा, तो चलिए, मुझे गाने का ख्याल यूं आया कि नज़ाकत हुसैन शाह ने फरमाइश की है, वो उन्होंने सुना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सुनाया गया, तो उन्होंने कहा क्या मुगले आजम की कोई सुना सकते हैं, तो मैंने कहा पूछूं आपसे कि आप कुछ अगर एक थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुना दें, कोई भी अपनी पसंद की चीज, चाहे बंगाली चाहे उर्दू, कुछ सुनाएंगे हमें?
देखिए, मैं गायक तो नहीं हूँ मगर मैं कोशिश करता हूँ
जी।
एक किशोर कुमार का रविंद्र संगीत में हिंदी गाना है
जी, जरूर।
मैं उसका मुखड़ा करता हूँ।
चलिए।
पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का, जिस पथ पर देखे इतने सुख दुख के मेले, फूल चुने कभी खुशियों के, फूल चुने कभी खुशियों के, कभी कांटों से खेले, जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका।
वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत मीठी आवाज। वैसे बंगाल में मुश्किल ही है, मेरे ख्याल हर कोई अच्छा गाता है, इतनी नहीं सचमुच। आप बम्बई रहे हैं तो शायद थोड़े बिगड़ गए, लेकिन मुझे लगता है बंगाल में सर के। अच्छा, ये तो बताइए, आपकी ये जो सोमा जी हैं, तो कैसे मुलाकात हुई, क्या हुआ, कुछ कहानी ये भी सुनाइए हमें फिल्मों के साथ साथ। आप रोमांटिक तो हैं, फिल्में बनाते हैं, टैगोर को पढ़ते हैं, तो अब बताइए कि शादी कैसे हुई?
मैं शादी वादी नहीं करना चाह रहा था। क्या बोलते हैं, वर्कोहलिक।
अच्छा।
बिकॉज टेलीविजन डज नॉट अलाउ यू टू रेस्ट
जी।
तो मैं टेलीविजन और फिल्म और डॉक्यूमेंट्री सब एक साथ करता था, आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। तो वेन मेरा एक वो था कि मैं जब नेशनल अवार्ड जीतूंगा उसके बाद ही मैं शादी करूंगा।
अच्छा, ये क्या बात हुई भाई?
मेरा एक वो था मेरे मन में,
गोल बना लिया था।
तो आई वॉज ऑलरेडी ए नेशनल नेम, तो मेरा एक सीरियल था युगांतर, वो बहुत एक फेमस साहित्य अकेडमिक अवार्ड विनिंग नॉवल के ऊपर था, सही समय बाय सुनील गांगुली
जी।
सही समय वाज रेनेसान ऑफ बंगाल, उसके ऊपर वो था, वो कहानी ऑन ए फैमिली, जमींदार फैमिली। तो मैंने उसका 26 पार्ट पे मैंने सीरियल बनाया था, एंड इट वाज यानी शाम को उस दिन सब लोग बैठ जाते थे देखने के लिए. तो इट वॉज सच ए पॉपुलर सीरियल. तो इनके घर में भी मेरा सीरियल देखा जाता था, सोमा जी के घर में.
अच्छा.
सब लोग बैठ के चाय वाय लेके दे टू सी माय सीरियल एंड देन. तो माय फादर वांटेड मी टू बी मैरिड. तो मैट्रिमोनियल में मेरा वो उन्होंने डाल दिया. तो ये उनके फैमिली ने पढ़ा, देवर उनका फैमिली फ्रीडम फाइटर मनमोहन चक्रवर्ती वाज सोमाज फादर
जी.
तो उन्होंने चिट्ठी दी कि वी आर वेरी हैप्पी टू. तो मुझे कहा गया भाई जाके देखो लड़की को. मैंने मेरा एक जिद था कि मैं भाई कभी लड़की देखने नहीं जाऊंगा. इट इज डिमीनिंग एक औरत को जाके देखना क्या है भैया, शादी है, पसंद है तो करो, नहीं तो. मैंने माता जी ने बोला जाओ देख लो एक बार. तो मैं बोला भैया हाँ चलो देखा. मैं आई डिड नॉट टॉक टू हर ऑल्सो, आई टॉक टू सोमाज मदर. शी वॉज ए वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गाती थी वो.
अच्छा.
हाँ बहुत बहुत. शी वॉज ए क्लासिकल सिंगर एंड शी हैड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हर करियर इन बनारस.
अच्छा.
तो उन्होंने बोला कि भैया ये गाती है और आप अगर इसको स्वीकार करो तो हम लोग बहुत खुश होंगे. तो मैं बोला देखिए मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे माता जी पिताजी बोलेंगे. बोल के हम लोग लौट के आए एंड माई सेड देखो यू हैव पुट मी इन अ पोजिशन वेयर आई हैव टू मैरी, क्योंकि मैंने देख के आया. एंड द मैरिज वॉज एग्रीड. इट वॉज शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल देन.
वैसे आपकी जब मैं डॉक्यूमेंट्री कोई भी देखती हूँ ना, मुझे लगता है ये शख्स जो है ना बहुत ही इश्क में मुब्तला है अपनी बीवी के. बस आपका बस नहीं चलता कि उनको कितना दिखाएं हर चीज में. और मैं ये तारीफन कह रही हूँ, आपको और भी लोग कहते होंगे ये बात, है ना. बहुत आपको अपनी बीवी, मतलब जाहिर उनकी आवाज भी प्यारी है, खुद भी प्यारी, और मुझे यकीन है कि वो एक बहुत अच्छी बीवी भी होंगी इसमें. मुझे
हाँ, there is no doubt that of that. She is a very good housekeeper. House family एकदम वो, she is the commander in chief and we are all her followers.
अच्छा, सही बात है. तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं जी, मजा आया. और मैं चाहती हूँ कि उनकी बात हुई है सोमा जी की, उनकी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की आवाज़ पे ख़त्म करें, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. और सामीन, इसके साथ ही हम घोष साहब को भी खुदा हाफिज़ कहते हैं, और आप सबको भी, नुकबत हमारी प्रोड्यूसर थी. और चलिए, इख्तिताम से पहले सुनते हैं एक झलक और उसी डॉक्यूमेंट्री से जो शुभंकर जी ने डायरेक्ट की है, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में.
इसके पहले आप किसी महिला के साथ आपने जुगलबंदी की है खान साहब?
हमने हमें अरे ये बताओ किसके साथ नहीं की? सिद्धेश्वरी रसूलन भाई बतूलन विद्याधरी राजेश्वरी कमलेश्वरी और आप समझ लीजिए कि ये शैल कुमारी शांति और क्या क्या नाम था मेरा
जहाँ
500 करीब करीब 40-45 सबकी जथा है. और जथा में हमारे मामू बैठते थे. वैसे तो
आखिरी बार कब किया था आपने किसी
में? अरे वो तो बहुत जमाना हो गया भाई, सन 42 में ऐसे कुछ था. लेकिन उसमें क्या होता था, अरे
डॉक्टर सोमा घोष, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी भी बनाया और जिनके साथ लोकसभा बाल योगी हॉल में सन 2003 में जुगलबंदी पेश की.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے ایک نئے ادارے کی تشکیل کے مسودہ قانون پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس ادارے کا مقصد ترقی پذیر ملکوں میں انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے $60 ارب کے نجی قرضوں کی فراہمی ہے۔ بعض لوگ اسے صدر کی امریکہ پہلے کی حکمت عملی میں تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں، جس میں بین الاقوامی امداد میں کمی کی تجویز دی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کی پیتسی وداکو سوارا کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایتھیوپیا کے شہر ادیس ابابا سے باہر فوری لیبو اسٹیشن نیم سہارا افریقہ میں پہلی جدید لائٹ ریل سسٹم کا مرکزی اسٹاپ ہے۔ یہ ایتھیوپیا کو خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں کلیدی بندرگاہوں سے مربوط کرتا ہے۔ انفراسٹرکچر کا یہ وسیع تر پروجیکٹ چینی فنڈ سے بنایا گیا ہے۔ سی ایس آئی ایس کے ڈینیل رونڈ ترقیاتی قرضوں کے ماہر ہیں۔
When the Trump administration, various senior people in the Trump administration traveled to Asia, when they traveled to other parts of the world and saw that China was eating our lunch,
سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز یعنی سی ایس آئی ایس کے ڈینیل رونڈ کا کہنا ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ کے بہت سینئر لوگ ایشیا کا دورہ کرتے ہیں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چین ہمارے حصے پر قبضہ کر رہا ہے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ زیادہ اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ماہ خاموشی سے ایک نیا ترقیاتی ادارہ قائم کیا، جسے یو ایس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن یا آئی ڈی ایف سی کا نام دیا گیا، اور اس کی بنیاد پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر کی گئی قانون سازی پر ہے جسے بلڈ ایکٹ کہا جا رہا ہے۔
برکنگز
انسٹیٹیوٹ کے جارج انگرم کا کہنا ہے کہ یہ اہم بات ہے کہ کانگریس اور انتظامیہ نے پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر ترقیاتی فنڈز کی اہمیت کو پہچان لیا ہے، تاکہ دنیا بھر میں امریکہ کو فروغ دیا جائے کہ وہ ترقیاتی مدد فراہم کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ستمبر میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا،
We reject the ideology of globalism.
صدر ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم عالمگیریت کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ کا یہ نیا ادارہ او پی آئی سی یعنی اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن کی جگہ لے گا، اور اس کے پاس زیادہ اختیارات اور زیادہ فنڈز ہوں گے۔ ٹرمپ اور بعض ریپبلکنز پہلے ہی او پی آئی سی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس بارے میں شکوک و شبہات تھے کہ ترقی پذیر ملکوں میں کاروبار کرنے والے اداروں کو قرضے دینا سرکاری وسائل کا اچھا استعمال ہے، لیکن اب انہیں ون بیلٹ ون روڈ کا سامنا ہے، اور دنیا بھر میں انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے چین کی طرف سے $1 خرب سے زائد کی سرمایہ کاری بھی ان کی نظر میں ہے۔ اس کی وجہ سے بیجنگ کو جغرافیائی سیاسی طور پر تقویت ملی ہے، لیکن فنڈز کی وصولی کرنے والوں کے لیے مسائل کی بھی نشاندہی ہوئی ہے۔
چائنا از آن اٹس وے ٹو بینگ دی ڈرگ ڈیلر آف انٹرنیشنل فائنانس۔
سی ایس آئی ایس یعنی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ڈینیل رون کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیات میں چین اب ایک ڈرگ ڈیلر کی طرح ہے۔ آج دنیا میں قرضے کے استحکام سے متعلق وسیع تر بحث جاری ہے، کیونکہ وہ مضحکہ خیز شرائط پر آسانی سے رقوم فراہم کر رہا ہے، اور یہ بھی بات ضروری نہیں کہ بین الاقوامی ضوابط کی پیروی بھی ہو رہی ہو۔ دوسری جانب بیجنگ ان الزامات کو مسترد کرتا ہے کہ اس کی طرف سے قرضوں کی فراہمی ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کے جال میں پھنس کر رہ جانے کا ماحول بناتی ہے۔ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ صرف $60 ارب سے آئی ڈی ایف سی کا نیا ادارہ دنیا میں چین کی سرمایہ کاری کا بہتر طور پر مقابلہ نہیں کر پائے گا، لیکن دوسرے بین الاقوامی قرضے فراہم کرنے والے اداروں کی شراکت داری کے ساتھ مل کر کافی نمایاں ہو سکتا ہے۔ برکنگز انسٹیٹیوٹ کے جارج انگرم کا کہنا ہے کہ فرانسیسی، برطانوی اور اسکینڈینیویا ملکوں میں ایک ہی طرح کے ادارے ہیں، اور اب آئی ڈی ایف سی کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ یہ نیا ادارہ او پی آئی سی کے مقابلے میں کہیں مؤثر شراکت دار ثابت ہوگا، اور افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں ترقی پذیر ممالک امریکہ کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور یہ درست سمت کی طرف اٹھایا جانے والا قدم ہے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔